दिन भर गुरुवार 27 अगस्त मैं हूं निखिल रंजन। गुजरात में फिलहाल शांति लेकिन तनाव कायम। पटेल समुदाय ने पुलिस पर लगाया तोड़फोड़ का आरोप।
पुलिस आई, उन्होंने दरवाजा बंद था, देखा, फोर्सफुली तोड़ के अंदर एंटर हुए और उसके बाद उन्होंने जिसके हाथ में जो चीज आई वो लेके उन्होंने कंपाउंड में 29 गाड़ी थी सभी गाड़ी को डैमेज कर दिया।
भारत प्रशासित कश्मीर में 3 चरमपंथियों की मौत। सेना ने 1 चरमपंथी को गिरफ्तार किया। केंद्र सरकार ने शुरू की स्मार्ट सिटी योजना। भारत का उपग्रह स्वदेशी इंजन वाले रॉकेट से पहुंचा अंतरिक्ष में। इसरो की बड़ी कामयाबी।
ये अनफोल्डेबल एंटीना भी हिंदुस्तान में बनाया है। जो जिसमें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो भी इंडिया में बनाई गई। तो ये टोटली जिसको कहते हैं मेड इन इंडिया लॉन्च है।
आपकी चिट्ठियों के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि पटेल आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए दंगों में पुलिस के कथित अत्याचार की जांच करवाएं और 2 हफ्ते के भीतर 16 में पुलिस के निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली घटना की रिपोर्ट जमा करें। आंदोलन के दौरान हुई इस हिंसा में गुजरात में कुल 9 लोगों की मौत हो गई है। सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे वीडियो पोस्ट किए गए हैं जिनमें पुलिस अधिकारियों को घरों में घुसकर खिड़कियों के शीशे तोड़ते हुए देखा जा सकता है। फिलहाल राज्य के 3 शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है। मोबाइल सर्विसेज की, SMS और इंटरनेट जैसी कई सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इराक की सेना के 2 जनरल एक आत्मघाती कार बम विस्फोट में मारे गए हैं। यह विस्फोट रामादी के सैन्य मुख्यालय में हुआ। चरमपंथी गुट इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। मारे गए जनरल्स में से एक इस रामादी शहर में सैन्य ऑपरेशन के प्रमुख थे। रामादी पर मई में IS ने कब्जा कर लिया था। तब से सरकारी सेना इसे फिर हासिल करने की कोशिश कर रही है। इन 2 सेना अधिकारियों की मौत सरकारी सेना के लिए बड़ा धक्का समझा जा रहा है। ऑस्ट्रिया के अधिकारियों के मुताबिक पूर्वी प्रांत बर्जनलैंड में एक लॉरी से करीब 20 अप्रवासियों के शव मिले हैं। पुलिस का कहना है कि मारे गए लोगों की तादाद 50 भी हो सकती है। पुलिस को यह लॉरी हंगरी की सीमा के करीब एक मुख्य मार्ग पर मिली। लॉरी का चालक फरार है। ऑस्ट्रिया की गृहमंत्री योआना मिकलाइटनर ने कहा कि इस हादसे के बाद यह और भी जरूरी हो जाता है कि यूरोपीय संघ अप्रवासियों को बचाने के लिए तुरंत ठोस नीतियां बनाए। आज का दिन हमारे लिए बहुत दुखद है। हमारी सहानुभूति पीड़ितों, उनके परिवारों और मित्रों के साथ है। यह हम सभी के लिए एक दुखद त्रासदी है। हम सभी जानते हैं कि मानव तस्कर अपराधी होते हैं और जो लोग ये सोचते हैं कि इन तस्करों के सहारे बचा जा सकता है उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये थे योहाना मिकलाइटनर के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। खबर है कि सीरिया की सरकार और विद्रोही बलों के बीच 2 दिन का युद्ध विराम 2 जगहों पर लागू कर दिया गया है। इनमें से एक शहर लेबनान की सीमा के पास स्थित जबादानी है जिस पर फिलहाल विद्रोहियों का कब्जा है। दूसरी जगह उत्तरी सीरिया के सरकारी नियंत्रण में कुछ गांव हैं। हाल के हफ्तों में इस इलाके में दूसरी बार युद्ध विराम लागू किया गया है ताकि आम लोगों को जरूरी चीजें मुहैया करवाई जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिन है कि जबादानी से विद्रोहियों के हटने और सरकारी नियंत्रण वाले गांवों से आम नागरिकों को हटाने पर भी समझौता हो जाए। नाइजीरिया के चिबोक शहर से 219 लड़कियों को अगवा किए जाने की घटना को आज 500 दिन हो गए हैं। इसीलिए पूरे देश में जुलूस निकाले जा रहे हैं ताकि कोई ठोस कार्रवाई की जाए और उन लड़कियों को वापस लाया जाए। चरमपंथी गुट बोको हराम ने देश के उत्तर पूर्व में स्थित एक बोर्डिंग स्कूल से इन लड़कियों का अपहरण किया था। ब्रिंग बैक आर गर्ल्स अभियान के तहत देश के सबसे बड़े शहर लागोस और राजधानी अबूजा में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के समूह लाल रंग पहने हुए हैं। BBC समाचार।
BBC रेडियो पर दिन भर में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आज निखिल रंजन के साथ शुरुआत करते हैं गुजरात से, जहां फिलहाल तो शांति है लेकिन तनाव बना हुआ है। पटेल समुदाय की तरफ से आरक्षण की मांग को लेकर हुई विशाल रैली के बाद से ही यहां हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं में अब तक कुल 8 लोगों की मौत भी हुई है। पटेल समुदाय के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हार्दिक पटेल ने गांव के किसानों से अपील की है कि वो शहरों में दूध और सब्जियों की आपूर्ति रोक दें। इसके अलावा उन्होंने पीड़ित परिवारों को 30 लाख रुपए के मुआवजे की भी मांग की है जिनके घर के लोग हिंसा की घटनाओं में मारे गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों को तुरंत निलंबित करने और उन पर हत्या का मुकदमा चलाने की मांग की है। BBC संवाददाता जुबैर अहमद आज अहमदाबाद पहुंच गए हैं। आइए सीधे उन्हीं के पास चलकर ताज़ा जानकारी लेते हैं। जुबैर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज वहां पहुंचने के बाद से अब तक क्या कुछ देखा सुना है आपने?
देखिए, मैं अब से 3-4 घंटे पहले यहाँ आया अहमदाबाद शहर में और हमने उन इलाकों का एक चक्कर लगाया जहां पर कल और परसों हिंसा हुई थी। अभी तो बिल्कुल शांत लग रहा है हर जगह और ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ हुआ ही नहीं था। लोग सड़कों पे आ रहे हैं और सब्जियां भी लोग बेच रहे हैं जो बाजार खुले हुए हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमें खबर आई कि एक बस को एक करीब के इलाके में जला दिया गया है जहाँ थोड़ी देर बाद हम जाने वाले हैं। यहाँ एक परिवार के हम आए हैं जिनके एक परिवार के सदस्य को परसों इनका कहना है कि पुलिस ने बहुत पीटा जिसके बाद उनका उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनसे अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं। और यहाँ पर कर्फ्यू तो अहमदाबाद में नहीं है लेकिन 5 ऐसे इलाके हैं राज्य में जहाँ कर्फ्यू अभी भी है। 3 से 6 बजे तक शाम में ढील दी गई थी कर्फ्यू में, लेकिन उसके बाद फिर से कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है।
जुबैर, अभी ये खबर आ रही है कि वहाँ पटेल समुदाय के कुछ लोगों के घरों में पुलिस ने घुसकर जबरदस्ती तोड़फोड़ की है और इसके कुछ वीडियो भी जो CCTV से लिए गए हैं वो जारी हुए हैं सोशल मीडिया पर और कुछ हमारे BBC के दफ्तर भी पहुँचे हैं। ये क्या है पूरा मामला?
हाँ, ऐसा लोग कह रहे हैं कि कुछ ऐसे इलाकों में जहाँ पर पटेल समुदाय के लोग रहते थे उनके घरों में भी घुस के लोगों ने मारपीट की है पुलिस वालों ने और रैपिड एक्शन फोर्स के लोगों ने, ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है उनके खिलाफ। और हमें भी अभी ये परिवार जहाँ मैं आया हुआ वो CCTV फुटेज दिखाने वाले जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि RAF के लोग आके रैपिड एक्शन फोर्स के लोगों ने आके उनके साथ ज्यादती की, पिटाई की। और सोशल मीडिया पे लोगों ने बाहर जाके लगाया होगा क्योंकि अहमदाबाद में बिल्कुल ऐसा है कि ना आप टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं, ना इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं और ना ही सोशल मीडिया पे जा सकते हैं। एक तरह से समझ लें कि सोशल मीडिया पे भी कर्फ्यू लगा हुआ है, तो जो चीज़ें भी आ रही हैं लोग बाहर जाके उसको लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, हमें भी ये कई लोगों ने बताया कि उनके घरों में, उनकी सोसाइटी में लोग घुसाए वर्दी पहने हुए लोग और उन्होंने ज्यादती की उनके बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, उनके उनकी पिटाई की और उनके साथ ज्यादतियाँ की।
प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास कदम भी उठाए जा रहे हैं सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए? क्योंकि ये मांग की गई थी हार्दिक पटेल की तरफ से कि जो सब्जी और दूध की आपूर्ति वगैरह है वो रोक दें, किसानों से अपील कर रहे हैं वो, ऐसा कुछ हुआ है वहाँ?
देखिए, प्रशासन का ये कहना है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने पुलिस लाठीचार्ज का कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं दिया था और ये पुलिस ने अगर ऐसा किया है तो उसकी वो जाँच के आदेश दिए हैं उन्होंने। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार से ये जवाब तलब किया है कि इतनी ज्यादती पुलिस ने क्यों की जबकि हिंसा पे जो लोग उतारू थे वो उनकी संख्या बहुत कम थी और उसके एवज उसके बदले में जो पुलिस ने कार्रवाई की बहुत ज्यादा थी, तो इस तरह की हरकत कैसे हो पाई ये हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया राज्य सरकार से। और पुलिस जगह जगह पे यहाँ पे तैनात है और हिंसा की जो कोशिश अगर कोई लोग कर भी रहे होंगे तो उसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि पुलिस यहाँ पर तैनात है। और राज्य सरकार का दावा है कि अब यहाँ पर शांति है और अहमदाबाद से भी जो बाहर महसाना और दूसरे इलाकों में परसों और कल हिंसा हुई थी वहाँ भी अभी शांति बनी हुई है, ये राज्य सरकार का दावा है।
बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, हम आपके पास फिर आएंगे। जुबैर अहमद BBC संवाददाता अहमदाबाद से जानकारी दे रहे थे वहां के ताज़ा हालात के बारे में। और इस बीच खबर आई है कि पुलिस ने पटेल समुदाय के कुछ कॉलोनियों में जाकर तोड़फोड़ की है। इस बारे में कुछ लोगों ने CCTV से ली गई वीडियो भी जारी की है और BBC के पास भी कुछ ऐसे वीडियो आए हैं जो आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं bbchindi.com पर। अहमदाबाद के कारोबारी दीपक पटेल जिस कॉलोनी में रहते हैं वहां भी पुलिस ने तोड़फोड़ और गाली गलौज की। थोड़ी देर पहले मैंने दीपक पटेल से फ़ोन पर बात कर इस बारे में जानकारी मांगी।
25 तारीख रात को 11 बजे के आसपास सभी सोसाइटी वाले अपने अपने घर में थे और कंपाउंड पूरा खाली था, सब सोने की तैयारी कर रहे थे। उसी टाइम पुलिस आई, उन्होंने दरवाजा बंद था देखा, फोर्सफुली तोड़ के अंदर एंटर हुए और उसके बाद उन्होंने जिसके हाथ में जो चीज आई वो लेके उन्होंने कंपाउंड में 29 गाड़ी थी सभी गाड़ी को डैमेज कर दिया। शुक्र है कि ये सब पुलिस को एंटर हुए देख के वॉचमैन था वो ऊपर आ गया, वरना पुलिस वाले वॉचमैन का क्या हालत करते वो भी एक सोचने जैसी बात है।
तो क्या कहना था पुलिस का, क्यों उन्होंने ये सब किया, क्या वजह थी? वो किसी को ढूंढ रहे थे क्या, कोई उससे पहले बातचीत हुई थी, कोई घटना हुई थी?
ऐसा तो कुछ मालूम नहीं था लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो पर्टिकुलरली पटेल कम्युनिटी को अटैक करना चाहते थे या फिर उनको इस सोसाइटी में पटेल कम्युनिटी के लोग ज्यादा है तो उसी इरादे से कुछ एंटर हुए हो या किसी के इन्फॉर्मेशन से एंटर हुए हो ऐसा लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से वो एंटर हुए और उन्होंने अपना काम चालू किया तो वो सिर्फ 5 या 7 मिनट का ही काम था, वो काम करके खत्म करके वो निकल गए।
उन्होंने किसी को गिरफ्तार करने या किसी से बातचीत या कुछ पूछताछ करने की कोशिश नहीं की?
कुछ नहीं, बस गालियां गंदी सी बोल के चले गए, ऐसी बहुत गंदी बुरी तरह से गालियां बोली, वो हम बोल भी नहीं सकते थे। ऐसे टाइम में पुलिस का इस तरीके का रवैया जो है वो एक चिंताजनक है।
तो इसके बाद आप लोगों ने फिर क्या किया, पुलिस को इस बात की सूचना दी, कहीं शिकायत दर्ज कराई इस बात की?
आज कमिश्नर ऑफिस गए हुए हैं क्योंकि हमें भी डर था कि पुलिस अपने सामने कंप्लेन कैसे लिखेगी। समझो साहिबाग पुलिस स्टेशन है हमारा जो आता है सोसाइटी के अंडर में, तो उस पुलिस स्टेशन में उसके ही कर्मचारी के अगेंस्ट में एप्लीकेशन कैसे लेगी, तो हमें भी डर था कि हम जाए और फिर हमें वहां भी परेशानी कर दे। तो हमने आज 3-4 आसपास की सोसाइटी में भी ऐसा हुआ था, सबको इकट्ठा करके कमिश्नर ऑफिस जाने का तय किया हुआ है, तो सब गए हुए हैं फादर और सब वहाँ कमिश्नर ऑफिस।
अहमदाबाद के कारोबारी दीपक पटेल बता रहे थे कि पुलिस ने किस तरह से उनकी कॉलोनी में तोड़फोड़ की। और अब खबर कश्मीर से। भारत प्रशासित कश्मीर में 2 अलग अलग घटनाओं में 3 चरमपंथी मारे गए हैं और भारतीय सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी चरमपंथी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। हाल ही में सेना ने नावेद नाम के एक पाकिस्तानी चरमपंथी को पकड़ा था। आज की घटनाएं उड़ी और सोपोर में हुई जहां कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी गए थे। पूरे ब्यौरे के साथ श्रीनगर से रियाज मसरूर।
सैनिक अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी कश्मीर में आज 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 3 चरमपंथी मारे गए और एक पाकिस्तानी चरमपंथी को जिंदा गिरफ्तार किया गया। बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा के निकटतम क्षेत्रों उड़ी और रफियाबाद में ये झड़पें कल रात से जारी थीं। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल एनएन जोशी के मुताबिक जिंदा पकड़े गए चरमपंथी का नाम सज्जाद उर्फ उबैदुल्ला है और वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे का रहने वाला है। इससे पहले भी जम्मू के उधमपुर में एक मुठभेड़ के दौरान नवीद नाम का एक चरमपंथी पकड़ा गया जिसके बारे में बताया गया कि वो पाकिस्तान के फैसलाबाद का नागरिक है। गौरतलब है कि रफियाबाद के निकटतम कस्बा सोपोर में आज ही कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने सुरक्षा स्थिति पर कोई बात नहीं की, अलबत्ता सरकारी नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि 2 दिन की यात्रा के दौरान इन्हें पता लगा है कि अगली बार वो राज्य में सरकार बनाने के योग्य हो जाएंगे। उत्तरी कश्मीर में मुठभेड़ों के चलते राहुल गांधी की जनसभा का स्थान बदल दिया गया था जिस पर वो खासे नाराज हो गए। गौरतलब है कश्मीर में सेना पुलिस और सुरक्षा बलों के साझे ऑपरेशनों में आए रोज चरमपंथी मारे जाते हैं। इन झड़पों में फोर्सेस को भी जानी नुकसान उठाना पड़ता है। भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार बनते ही कश्मीर में हिंसा का स्तर बढ़ गया है और सीमा पर भी भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच आए रोज झड़पें होती हैं। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
इनको पहले 2 गोलियां लगी, फिर 2 गोलियां और लगी और वो अटैक आगे बढ़ते गए। उसके बाद में ब्रूटल बेनेट फाइट हुई।
कहता साहब मैंने तो मर जाना है, हम हमला करने आए हैं, आप आगे चलिए, मेरी परवाह मत करो। उसने मेरे से बात की, अपना ट्रिगर दबाया, एक ग्रेनेड गया, मैंने पूछे मुड़ कर देखा,
कश्मीर पर हमला किया जा रहा है और मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान को उसको बढ़ाने का उसका पूरा इरादा है।
साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर सुनिए रेहान फजल की एक खास पेशकश 1 सितंबर से शाम में दिन भर और सुबह विश्व भारती में।
भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने देश भर के 98 चुने हुए स्मार्ट सिटी की सूची जारी की है जिसमें 24 राज्यों की राजधानियां भी शामिल हैं। इनमें सबसे ज़्यादा शहर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के हैं। चयन की प्रक्रिया से तैयार किए गए प्रारूप के आधार पर पूरी की गई है और शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री वेंकैया नायडू का कहना है कि ये चयन के 2 चरण अब भी बाकी हैं। और जानकारी के साथ दिल्ली से सलमान रावी।
स्मार्ट शहरों के चयन के मामले में उत्तर प्रदेश ने बाजी मार ली है और सबसे ज्यादा आबादी वाले इस राज्य में 13 शहरों को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने बृहस्पतिवार को चयनित किए गए 98 स्मार्ट शहरों की घोषणा करते हुए कहा कि हर राज्य को कम से कम 1 स्मार्ट सिटी दी गई है। इसके साथ साथ कुल मिलाकर विभिन्न राज्यों की 24 राजधानियों को स्मार्ट सिटी योजना के लिए चुना गया है।
इन वन सेंस The inclusion goes to prove that selection in the first stage of competition was not swayed by the status or importance of cities, and the selection was objective as per the stipulated criteria. I really compliment the states for this selection and proposal. Of the 98 cities,
वेंकैया नायडू कह रहे थे कि इस योजना के लिए राज्यों में एक तरह की प्रतिस्पर्धा थी, क्योंकि सभी राज्यों को एक फॉर्मेट यानी संरूप को भरना था, जिसके आधार पर शहरों का चयन किया गया। उत्तर प्रदेश के अलावा तमिलनाडु के 12, महाराष्ट्र के 10, मध्य प्रदेश के 7, बिहार और आंध्र प्रदेश के 3, गुजरात और कर्नाटक के 6 शहरों को इस योजना के लिए चुना गया है। बचे हुए शहरों से कहा गया है कि वो फिर से तैयारी करें और कमियों को पूरा करें, ताकि दूसरे चरण में उनका चयन किया जा सके।
A smart city would ensure core infrastructure and give a clear quality decent life to the citizens and enable a clean and sustainable environment and application of smart solutions with economic opportunities. The core infrastructure elements in our context have been identified as adequate water supply.
वेंकैया नायडू कह रहे थे कि इन स्मार्ट शहरों में उच्च गुणवत्ता वाली जीवन शैली को मुख्य केंद्र में रखा गया है, जो किसी भी यूरोपीय देश से तुलना कर सकेंगे। इन शहरों में विश्व स्तर की आधारभूत संरचना, अच्छे वातावरण और स्मार्ट समाधान के विकास के लिए अगले 5 सालों में हर शहर को 100 करोड़ रुपए हर साल देने का प्रावधान किया गया है, जिसमें पहले साल में ही हर शहर को 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके लिए राज्य सरकारें भी इन शहरों के विकास के लिए हर शहर को 100 करोड़ रुपए अलग से देंगी। वैसे तो ये योजना 48,000 करोड़ रुपए की है, मगर राज्यों के योगदान से ये बढ़कर 96,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। सरकार का कहना है कि ये योजना 5 साल की होगी और अब इस चयन प्रक्रिया के 2 और चरण बाकी बचे हुए हैं। उन्होंने प्रदेशों से अपील की है कि जो शहर छूट गए हैं, वो अगले 2 बचे हुए चरणों के चयन के लिए बेहतर तैयारी करें। सलमान रावी, BBC, दिल्ली।
बिहार से केवल 3 शहरों को ही सूची में जगह मिली है, और ऐसी खबर आ रही है कि पटना इनमें शामिल नहीं है। हमारे सहयोगी मनीष शांडिल्य ने पटना में लोगों से सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के बारे में बात कर उनकी राय जाननी चाही।
एम रहमान साहब, पटना का चयन नहीं हुआ है स्मार्ट सिटी के रूप में, इससे कितना निराश हैं आप?
हम लोग जनता में बहुत निराशा है इसकी, क्योंकि पटना बिहार का कैपिटल है और इस शहर को खूबसूरत बनाना चाहिए था। केंद्र इस पर ध्यान देना चाहिए था केंद्र को, और ये नहीं देकर एक तरह से कह लिया जाए कि हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार जैसा हुआ है। तो ये सब सारी बात है, जो स्मार्ट सिटी आने से बहुत सारी बात होती, पैसा आता, शहर सुंदर बनता, इस कारण से हम लोगों को निराशा है नहीं बनने से।
जी, आपका नाम क्या हुआ?
कौशल किशोर राम।
कौशल किशोर जी, बिहार इतना बड़ा राज्य है और बिहार से बस 3 शहरों का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में हुआ है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी?
इसलिए तो विरोध कर रहे हैं कि आपको चुनना चाहिए, है ना? अब नहीं चुना गया है तो अब वो लोग नहीं जानेंगे भाई।
जैसा पिछड़ा राज्य बिहार माना जाता है, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कितने शहरों का चयन यहाँ से स्मार्ट सिटी के रूप में होना चाहिए था?
होना चाहिए तो आओ सही है, 5-6 को उनसे जिला करना चाहिए, लेकिन नहीं चुना गया है इसलिए विरोध करते हैं।
मेरा नाम भरत कुमार हुआ।
भरत जी, आपके सपनों का स्मार्ट सिटी कैसा होना चाहिए?
मेरे सपनों का स्मार्ट सिटी ऐसा होना चाहिए जो कि मतलब सारी सुविधाएं मौजूद हो, जैसे यातायात की सुविधा, साफ सफाई की व्यवस्था, तीसरा है शिक्षा की व्यवस्था, चौथा स्वास्थ्य के प्रति, सरकारी हॉस्पिटल है, दवाइयां की कमी रहती है, डॉक्टरों की कमी रहती है।
मुंबई में बेटी की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार हुई इंद्राणी मुखर्जी के पति पीटर मुखर्जी के बेटे से आज पुलिस ने दूसरी बार पूछताछ की है। इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना बोरा के संबंध राहुल मुखर्जी से थे और इसे भी हत्या की एक वजह माना जा रहा है। पूरे दिन क्या कुछ हुआ इस मामले में, ये जानने के लिए थोड़ी देर पहले मैंने बात की हमारे सहयोगी अश्विन अघोर से, आप भी सुनिए।
इंद्राणी मुखर्जी मामले में आज मुंबई पुलिस ने पीटर मुखर्जी के बेटा है राहुल मुखर्जी, उनसे आज पूछताछ की है। पूरे मामले में जब से 2012 में शीना मुखर्जी कथित तौर पर अमेरिका चली गई थी, उसके बाद से राहुल मुखर्जी ने उसे ढूंढने की या उससे कांटेक्ट करने की कोई कोशिश शायद नहीं की थी, जिसका मुंबई पुलिस इस मामले के उजागर होने के बाद ये एक अजीब सी बात सामने आई थी कि रिलेशनशिप में होने के बावजूद राहुल मुखर्जी ने शीना बोरा की ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की, और उसको इस मामले में और जानकारी हो सकती है इस दृष्टिकोण से मुंबई पुलिस ने आज राहुल मुखर्जी को खार पुलिस स्टेशन में उसका इंट्रोगेशन किया है।
राहुल मुखर्जी ने क्या कहा, उन्होंने क्यों ऐसा नहीं किया या कोशिश की थी तो क्या की थी, कुछ जानकारी दी उन्होंने?
उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार इंद्राणी मुखर्जी से पूछा उसके बारे में, उनके नंबर के बारे में, वो कहाँ है, वो क्या कर रही है, लेकिन चूंकि इंद्राणी मुखर्जी को इस रिलेशनशिप से एतराज था, उनकी हर कोशिश का अंत झगड़े में होता था और उन्हें कोई खास इसमें सफलता नहीं मिली। उन्होंने ये साफ डिनाई किया है कि पिछले दो तीन सालों में उन्होंने कुछ उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की।
पुलिस का क्या कहना है, अब इसके बाद वो क्या करने वाली है? अब जो इंद्राणी मुखर्जी के दूसरे पति हैं, जिन्हें इस हत्याकांड में शामिल बताया जा रहा है, जिन्हें कोलकाता से गिरफ्तार भी किया गया था, क्या उनको मुंबई लाया जा रहा है?
उन्हें कोलकाता के अलीपुर में गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन अभी उन्हें मुंबई लाने के लिए जो कानूनी कार्यवाही वहाँ पूरी करनी है वो अभी चल रही है। उन्हें अभी अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया है और वहाँ पर वो प्रोसेस पूरी होने के बाद उन्हें मुंबई लाया जाएगा और उनसे बाकी पूछताछ करके तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी। इस बीच मुंबई पुलिस के जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर देवेन भारती से जब बात इस बारे में बात की गई तब उन्होंने बताया कि शीना बोरा जहां काम करती थी, मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड, वो वहां पर असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी और अचानक 24 अप्रैल 2012 को छुट्टी लेकर वो चली गई और कुछ ही दिनों बाद उसका इस्तीफा कंपनी में आ गया। तो ये पुलिस के मुताबिक इस पर भी कंपनी ने कोई तफ्तीश नहीं की, कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं की कि ये सही में ऑथेंटिक रेजिग्नेशन लेटर है या किसी ने फेक रेजिग्नेशन भेजा है, वो ईमेल से आया था या डाक से आया था। अगर डाक से आया था तो क्या कंपनी ने उसमें वेरीफाई किया था हैंडराइटिंग या कुछ, और अगर शीना बोरा के कंपनी के मुताबिक शीना बोरा ने अगर रिजाइन करके नौकरी छोड़ दी है तो उसके जॉब का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किस तरह से किया गया, ये सब बातों की जानकारी के लिए पुलिस हो सकता है कि मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एचआर डिवीजन के ऑफिसर्स के साथ भी पूछताछ करे।
इंद्राणी मुखर्जी के पति हैं पीटर मुखर्जी, क्या उनसे भी कोई पूछताछ की गई है?
ऐसे संकेत तो मिल रहे हैं क्योंकि राहुल मुखर्जी की मुखर्जी से पूछताछ अभी आज हुई है। इनफैक्ट ये दूसरी बार राहुल मुखर्जी के साथ पूछताछ हो रही है, कल रात को भी उनसे पूछताछ की गई थी और आज फिर से दोबारा की गई।
मुंबई से अश्विन अघोर जानकारी दे रहे थे इंद्राणी बेटी की हत्या के आरोप में हुई गिरफ्तारी के बारे में। और अब खबर इसरो से है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज शाम 4:52 पर एक और अपने उपग्रह को अंतरिक्ष में भेज दिया है। उपग्रह का प्रक्षेपण सफल रहा है। मैंने साइंस पत्रिका के दक्षिण एशिया संवाददाता पल्लव बागला से बात कर इस बारे में और जानकारी मांगी।
देखिए, आज हिंदुस्तान ने अपना जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है GSLV उसकी 9वीं उड़ान की थी और ये तीसरी बार इसमें हिंदुस्तानी में बना हुआ क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल हुआ और ये GSLV की लॉन्च जो थी वो बहुत सक्सेसफुल रही। ये जो GSLV की उड़ान थी इसमें एक खास किस्म का सैटेलाइट रखा हुआ था जिसको GSAT-6 बोलते हैं और ये GSAT-6 सैटेलाइट जो है ये हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के लिए बहुत जरूरी है। कॉर्डलेस फोन या मोबाइल फोन जितना बड़ा कोई डिवाइस होगा उससे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से सारे सोल्जर और सारी सिक्योरिटी फोर्सेस एक दूसरे से बात कर सकेंगे। ये जो GSAT-6 सैटेलाइट है इसमें एक खास किस्म का एंटीना यूज किया गया है जिसको कि 6 मीटर डायमीटर का है, छाते की तरह बंद करके रखा जाता है और बाद में जब अंतरिक्ष में होता है तब उसको खोला जाता है। उससे खास बात यह होती है कि जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि छोटे छोटे हैंडल डिवाइस से भी आप सैटेलाइट के द्वारा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हिंदुस्तान ने इससे पहले एक नेवी सैटेलाइट छोड़ा था जिससे कि इंडियन ओशन रीजन में पूरी कम्युनिकेशन की कवरेज मिली थी और अब लैंडमास पे भी कम्युनिकेशन की पूरी सुविधा हो जाएगी। तो हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए GSAT-6 और GSAT-7 सैटेलाइट मिलके पूरा कम्युनिकेशन का एक अच्छा नेटवर्क बन पाएगा।
जैसे हम लोग अभी मोबाइल फोन से MMS और SMS या इस तरह की चीजें जो भेज पाते हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट भेज पाते हैं, क्या अब उसके लिए कोई और डिवाइस डेवलप किया जा रहा है और उसकी ये कनेक्टिविटी इस सैटेलाइट से होगी?
जी बिल्कुल, जैसे मोबाइल फोन होते हैं वैसे ही एक हैंडहेल्ड डिवाइस होगी, लेकिन ये आम जनता के लिए नहीं है, ये केवल सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है जिनको की ये सुविधा मिलेगी और जिनके पास ये हैंडहेल्ड डिवाइसेस होंगे और आपस में ये सिक्योर वे में कम्युनिकेट करेंगे। मतलब सिग्नल जो है वो इनक्रिप्टेड आएगा जिसमें कोई उसको हैक ना कर सके। और ये खास किस्म का जो हैंडहेल्ड डिवाइस है ये भी हिंदुस्तान में बनाई गई है,
ये अनफर्लेबल हैंटना भी हिंदुस्तान में बनाया है, जो जिसमें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो भी इंडिया में बनाई गई। तो ये टोटली जिसको कहते हैं मेड इन इंडिया लॉन्च है और इसको हिंदुस्तान ने बड़े कारगर तरीके से पूरा किया।
दक्षिण साइंस पत्रिका के दक्षिण एशिया संवाददाता पल्लव बागला बता रहे थे आज इसरो ने जिस उपग्रह को लॉन्च किया है उसके बारे में। और अब वक्त है आपकी चिट्ठियों का।
आपकी राय के साथ हाजिर हूँ मैं मोहनलाल शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं इंदु पांडे।
आप कुछ मिस कर रहे हैं, आपने ये नहीं कहा कि मैं मुस्कुराती हुई बैठी।
तो चलिए हंसते हुए आज चिट्ठियों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं।
जी हाँ, ये पहली चिट्ठी है एहसान असगर की। कहते हैं रेहान जी वेलकम टू द क्रीज, और आते ही आपने बाउंड्री लगा दी।
किस बारे में कह रहे हैं वैसे?
प्याज के बारे में।
हाँ क्या बात है।
पुष्पेश पंत जी से आपकी बातचीत बहुत अच्छी लगी, ऐसा लगा कि आप आए बाहर आई।
क्या बात है, क्या बात है।
और निखिल ने जो दुनिया जहान दिया था वो भी इन्हें बहुत पसंद आया है।
बहुत खूब।
और निखिल के ही लिए एक और चिट्ठी आई है इनायत की इलाहाबाद से। अखलाक अहमद सराय इनायत इलाहाबाद से लिखते हैं कि भाई दुनिया जहान जो आया बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड।
निखिल रंजन का इस बार जो दुनिया जहां था वो पलमायरा पर था, और आपको निखिल रंजन की का ये कार्यक्रम अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और अखलाक अहमद साहब, आप इसी तरह लगातार ईमेल लिखते रहें, आपकी लगातार सारी ईमेल हमें मिलती हैं और हम उन्हें बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ते हैं।
और अगली चिट्ठी है हमजा इकबाल की गोपालगंज बिहार से। कहते हैं कि भाई बीबीसी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हम तक प्रमाणिक समाचार पहुंचाते हैं। 21 अगस्त का विवेचना जो नुसरत फतेह अली खां की बरसी पर था लाजवाब था। मोहनलाल जी
धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
आपका अंदाज इन्हें बहुत पसंद आया।
वैसे
कई बार ऐसा ही होता है जब तारीफ की जाती है तो समझ नहीं आता कि उसकी प्रतिक्रिया कैसे की जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया, हम तो यही कहेंगे कि आपने हमारी हौसला अफजाई की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया।
आगे लिखते हैं कि राजेश प्रियदर्शी जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि पिछली बार मेरे मेल को उन्होंने शामिल किया। वाकई प्रियदर्शी जी जो हमारे मेल और पत्र का जवाब देते हैं बहुत ही सटीक और संतुष्टिदायक होता है।
अगले सोमवार को संभवतः राजेश प्रियदर्शी फिर हाजिर होंगे, और ये जो बात अभी आपने कही है ये अभी हम इस कार्यक्रम के बाद तुरंत उन तक पहुँचा देंगे।
जरूर। और ये चिट्ठी है बिजनौर उत्तर प्रदेश से सर्वेंद्र राजपूत की। लिखते हैं कि ये मेरा पहला ईमेल है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसे ज़रूर सम्मानित करें।
सम्मानित कर दिया, हमने इसे शामिल कर दिया।
और आपके प्रोग्राम दिनभर और घटना चक्र का नियमित श्रोता हूँ। और आगे कहते हैं कि मोहनलाल जी की प्रस्तुति की तारीफ के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ गए।
शब्द मेरे पास भी नहीं है कि मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं, लेकिन यह है कि कार्यक्रम अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारी जो मेहनत है वो सफल हुई।
रेहान फजल को अनुमति दीजिए, ये लाइन उनके दिल को छू जाती है।
ये यही तो अंदाज है उनका, रेहान फजल साहब का यही अंदाज है, और ये भी आपको अच्छा लगता है।
और अमृता कहती हैं कि कुछ ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें एनवायरनमेंट को शामिल किया जा सके, उसकी अवेयरनेस, उसकी नॉलेज को बताया जा सके।
हम अक्सर इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं, और जब भी कोई विषय आएगा तो निश्चित तौर पर आपने जो कहा है इसे हमने रख लिया है आपके सुझाव को, और जब भी कुछ ऐसा होगा हम इसे ज़रूर इस विषय पर कार्यक्रम पेश करेंगे।
भाई आज मुझे लगता है कि आपका ही दिन है, क्योंकि बहुत सारी चिट्ठियाँ आई हैं। नवीन शर्मा नई दिल्ली से लिखते हैं कि फैला उजियारा मोहनलाल जी की प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी।
मुझे लगता है कि आप छांट छांट के आज मेरे लिए ही चिट्ठियाँ लाई हैं।
और इसी के साथ शायद अब वक्त हो गया है।
बिल्कुल वक्त हो चला है, तो कार्यक्रम का पता आप सब जानते हैं इसलिए दोहराने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं। मोहनलाल शर्मा और इंदु पांडे को अनुमति दे, नमस्कार।
और अब आखिर में प्रमुख समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि पटेल आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए दंगों में पुलिस के कथित अत्याचार की जांच करवाएं। इराक के सेना के दो जनरल एक आत्मघाती कार बम विस्फोट में मारे गए हैं। ऑस्ट्रिया के अधिकारियों के मुताबिक पूर्वी प्रांत बर्जनलैंड में एक लॉरी से करीब 20 अप्रवासियों के शव मिले हैं। खबर है कि सीरिया की सरकार और विद्रोही बलों के बीच दो दिन का युद्ध विराम दो जगहों पर लागू किया गया है। नाइजीरिया के चिबोक शहर से 219 लड़कियों को अगवा किए जाने की घटना को आज 500 दिन हो गए हैं। ब्रिंग बैक आर गर्ल्स अभियान के तहत देश के सबसे बड़े शहर लागोस और राजधानी अबूजा में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के समूह लाल रंग पहने हुए हैं, और ये लोग सड़कों के साथ साथ लाल रंग के रिबन भी बांधते जा रहे हैं। उनकी कोशिश है कि इन स्कूली लड़कियों को वापस लाने का मुद्दा लोगों और सरकार के फोकस में बना रहे। यूक्रेन और इसके अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं के बीच एक समझौता हो गया है जिसके तहत यूक्रेन अपने विदेशी कर्ज को पुनर्गठित कर सकता है। बीबीसी समाचार।
आज के दिन भर में इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र में। तब तक खबरें देखनी है तो आइए bbchindi.com पर। आज स्टूडियो संभाला अजीत सारथी ने। निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।